जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र शिष्यमत भयचरण नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 10 और 11। परित्यक्त गुण सम्यक् दर्शनोषदाशयः शान्तिं मे समवस्थानम् ब्रह्मकैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणसम्यक् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे संवस्थानम् ब्रह्मकैवल्यमश्नुते परितक्त्यगुणसम्यक् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानम् ब्रह्मकैवल्यमश्नुते Matajis Paritakta Guna Samya Prashana Vishadha Shabdarth or translation or Tatparya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Dwara परित्यक्त गुणः जो भौतिक प्रकृति गुणों से विरक्त है सम्यक सम दर्शनः जिसकी दृष्टि विशद अकलुषित आशयः जिनका मन या हृदय शांतिम शांति में मेरा समवस्थानम समान पद ब्रह्मा आत्मा कैवल्यम भौतिक कल्मश से विमुक्त अश्नुते प्राप्त करता है। जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं का सम्यक दर्शन कर सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य, मायावादी कैवल्य संबंधी विचार वैष्णवों के विचारों से भिन्न है। मायावादी सोचता है कि ज्यों ही कोई समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होता है वह परमेश्वर में तदाकार हो जाता है। वैष्णव चिंतक की कैवल्य संबंधी विचारधारा भिन्न है। वह अपनी तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। अकलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का नित्य दास मानता है जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है, जो जीवात्मा का पूर्णावस्था का पद है। यह संबंध सरलता से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जब कोई श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से अनुरक्त रहता है तो उसे तुरंत ही दिव्य कैवल्य पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। सो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भागवत कथा में। सो सबसे पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करेंगे कि हम इस भागवत पे कुछ कथा कर सकें भक्तों की प्रसन्नता और आत्म शुद्धिकरण के लिए। तो ये चौथे स्कंद का प्रसिद्ध लीला चल रही है जिसमें पृथु महाराज और भगवान का संवाद हो रहा है और इसमें भगवान पृथु महाराज के व्यवहार से बहुत प्रसन्न होकर उनको अभी उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें भगवान एक जीव के उनसे संबंध के विषय में बता रहे हैं कि कब भगवान के साथ एक जीव का संबंध जुड़ जाता है। तो जब जीव इस संसार में आते हैं भौतिक जगत में, जब वो जीव प्रवेश करता है अपनी स्वतंत्र इच्छा से, हर एक जीव को भगवान ने स्वतंत्रता रत्न दिया है और जब इस स्वतंत्रता रत्न का दुरुपयोग करके वो जीव इस संसार में आ जाता है तो अनेक प्रकार से इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करता है और इस प्रकार वो उसमें और बंधता जाता है। सबसे पहले तो जय श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो सबसे पहले जब जीव इस संसार में, इस भौतिक संसार में आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है, वो अपने आप को भगवान का दास नहीं, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, ये छोड़ के वो समझने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, यही समझने लगता है। तो इसके कारण वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से आवरण उसका हो जाता है और अनेक प्रकार के इंद्र तृप्तियों में लग जाता है और कृष्ण भुलिया जी वो भोगवांछा करे। जब भगवान से विरक्त होके भोगवांछा करता है जीव तो जैसे ही ये भावना आती है मन में, माया तारे झपटिया धरे, वो माया देवी के वश में आ जाता है और अनेक प्रकार के भौतिक कार्य करने लगता है। तो इसलिए कहा गया है कि वो जो जीव है वो एकदम प्रमत्त होता है, पूरा पागल है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, तो वो ये नहीं समझ रहा है कि संसार में इंद्र तृप्ति करेंगे तो दुख ही मिलेगा, इसलिए उसको वो पागल पूर्ण प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त कहा गया है, क्योंकि पागल व्यक्ति को समझता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो इसलिए कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतय आपृणोति, और अनेक प्रकार से इंद्र तृप्ति करते करते इस संसार में और बंधता जाता है। तो भागवतम में बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान केंद्र में नहीं है, यदि गृहस्थ घर में यदि भगवान केंद्र में नहीं है तो ग्रह जो है वो काराग्रह बन जाता है। तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहम गृहम यावन मोहोंग्रि निगड़ो यावन कृष्ण न तेजना। तो जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए वो घर जो है वो काराग्रह है और उस घर में जो भी आसक्तियां हैं, पत्नी बच्चे पति परिवार, वो क्या है, वो एक श्रृंखला है, वो बंधता जाता है, उससे और ज्यादा बंधता जाता है। और फिर उसके पश्चात वो इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करता है किसी भी प्रकार से। तो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है व्यक्ति। सबसे पहले इस जीव में वो कौन सा स्टेज आता है, स्टेज ऑफ एंटेंगलमेंट, वो बंध जाता है इस संसार में। फिर वो स्टेज ऑफ एंजॉयमेंट पे आता है, वो अनेक प्रकार से इंद्र तृप्ति करने का कोशिश प्रयास करता रहता है अनेक प्रकार से, वो ये नहीं सोचता है कि ये सही है क्या गलत है। फिर धीरे धीरे वो कर्म कांड के स्तर पे आता है। कर्म कांड का स्तर क्या है, जिसमें वो समझ गया है, नहीं मुझे विकर्म नहीं करना है, अच्छा कर्म ही करना है, लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मुझे इंद्र तृप्ति करनी है। तो इसके लिए वो अनेक प्रकार से प्रयास करता रहता है और प्रयास करते करते वो बहुत बार मार खाता है, माया अतएव माया तारे झपटिया धरे। तो इसलिए भागवत में बताया गया, यस त्वाम विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थानां विषमात् अमृतं त्यजन्। तो विष को, अमृत को छोड़ के विष खाने का प्रयास कर, यस त्वाम विसृजते, हे भगवान जो आपका विस्मरण करके खुद की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करे वो क्या कर रहा है, विपर्य इंद्रिय अर्थानाम, इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास कर रहा है और वो क्या कर रहा है, विष खा रहा है अमृत छोड़ के। तो इसलिए कविराज गोस्वामी भी बताते हैं, अरे जो भी जीव इस संसार में आ रहा है और महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण नहीं कर रहा है वो मूर्ख है, वो विष खा रहा है अमृत छोड़ के। पाइया मनुष्य जन्म जेना शून्य गौर गुण हे न जन्म तार व्यर्थ होइला, पाइया अमृत धुनि पिए विष गर्त पानी जन्मी आसे तेन नहीं महिला। पाइया मनुष्य जन्म, अरे मनुष्य जन्म मिला है ये न सुने गौर गुण, महाप्रभु की गुण को लीलाओं को नहीं सुन रहा है ना, जन्म तार व्यर्थ होइला, उसका जन्म व्यर्थ हो गया। ये ऐसा ही है जैसे किसी को एक अमृत की नदी मिल जाए और वो क्या कर रहा है, पिए विष गर्त पानी, वो विष के नदी में से गड्ढे में से विष खा रहा है, उसको जन्म लेना उसका व्यर्थ हो गया है। तो इसलिए जब व्यक्ति संसार में इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करता है तो वो ये नहीं समझता है कि उससे दुख ही मिलने वाला है, दुख की योनि है वो, वहां से केवल दुख ही जन्म लेगा, इंद्र तृप्ति करने करेंगे तो दुख ही जन्म लेगा। लेकिन भौतिक अवस्था में बद्ध जीव को ये नहीं समझता है, बद्ध जीव को लगता है नहीं नहीं थोड़ा तो कहीं पर होगा सुख, इतना भी बुरा नहीं है। इतना एडवर्टाइजमेंट चल रहा है भौतिक जगत में, ये कर लो सुखी हो जाओगे, ये खा लो ये पी लो ये देख लो सुखी हो जाओगे, कुछ तो होगा। तो वो प्रयास करता रहता है, उसका आशा जाता नहीं है। तो आशा ही ऐसी श्रृंखला है जिससे जो व्यक्ति बंधा रहता है वो सब तरफ भागता रहता है। जनरली कोई बंधा हुआ व्यक्ति एक जगह बैठता है, लेकिन आशा के पास से बंधा हुआ व्यक्ति सब जगह भागता रहता है। तो आशा नाम ही मनुष्याणाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला, ये बहुत आश्चर्यजनक श्रृंखला है। बद्ध सर्व प्रधावंती मुक्त तिष्ठति पंगुवत, जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो सब जगह भागता है, और जो मुक्त है जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सब जगह जा सकता है, लेकिन वो एक जगह शांति से बैठता है, वो अंतर मन में भगवान को याद करके स्मरण करके वो संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। तो ये दूसरा है स्तर, जब वो स्टेज ऑफ एंजॉयमेंट पे रहता है, वो हमेशा सोचता रहता है कि ये कर लूँ तो मुझे सुख मिल जाए। हालांकि वो सुनता भी है कि इंद्र तृप्ति करने से दुख ही मिलेगा, लेकिन वो इधर से घुसता इधर से निकल जाता है, वो हृदय में जाता नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र को जब अक्रूर जी आके बोले कि आप अपने ये दुर्योधन को इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं, इतना आप मान सम्मान दे रहे हैं, उसको राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका बेटा है पुत्र है वही आपके पूरे कुल का नाश करेगा, उसको त्याग दो। तो धृतराष्ट्र वो बोलते हैं आपके जो उपदेश है ना बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार आसमान में जो बादल में जब बिजली कड़कती है वो बिजली रहती नहीं है उधर, वो एक क्षण में ही चली जाती है, उसी प्रकार से आपके जो अच्छे उपदेश हैं मेरे मन में रह ही नहीं रहे, मुझे मालूम है ये सही है लेकिन वो मेरे मन में नहीं रहे। तड़ित सौदामिनी यथा, उसको बोल रहे हैं तड़ित मतलब बिजली, तो तड़ित सौदामिनी, सौदामिनी अर्थात बिजली, बिजली के तरह वो एकदम एक क्षण के लिए रहती है फिर चली जाती है। तो ऐसे ही इंद्र तृप्ति में जो लगा हुआ व्यक्ति है, आसक्त व्यक्ति है, उसको अच्छे उपदेश सुनने के पश्चात भी ये लगता है नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है इस संसार में, है ना। माया देवी मार मार के इधर से गाल पे झापड़ पड़ रहा है फिर भी दूसरी तरफ से बोल रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं अच्छे दिन आएंगे, है ना। आजकल लोग पहन के टी शर्ट पे रहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, है ना। तो वही आशा में लगता रहता है अपना टाइम आएगा, अभी तो आ जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि भाई मित्रों को बता रहे हैं अपने कि हे दैत्यों के पुत्रों, इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास मत करो, सुख के लिए प्रयास मत करो। सुखम इंद्रिय कम दैत्या देहिनाम देह योगिनम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम यत्नतः। दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता है फिर भी दुख आ जाता है, उसी प्रकार सुख के लिए भी कोई प्रयास नहीं करेगा तो सुख आएगा। सुख के लिए प्रयास मत करो तो सुख के लिए अपना टाइम आएगा, ऐसा सोचते रहते हैं you know? तो किसी ने वो एक मेरे को एक मैसेज भेजा था, उसमें बोला था एक जब 18 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 30 के हो गए अभी भी उम्मीद थी, 40 के हो गए अभी भी उम्मीद जवान है, 50 के हुए अपना टाइम तो आया ही नहीं, फिर 60 के हुए एक दिन सीने में दर्द हुआ हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला रिश्तेदारों को बुला लो इनका टाइम आ गया है। तो ऐसा है कभी भी आशा जाती नहीं है, हमेशा लगता है कि अभी अपना टाइम आने वाला है अभी सुख आ जाएगा। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु वय परम न तथा विन्दसे क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। तो किसके लिए प्रयास करना है, मुकुंद के चरण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए, वही शाश्वत सुख दे सकता है। तो वो इंद्र तृप्ति करते करते वो इस संसार में इतना दुखी होता है फिर भी वो समझ नहीं रहा है। जैसे धृतराष्ट्र को जब विदुर जी आए समझाने के लिए, कितने कड़े शब्दों में उनको समझाए हैं, बोले तुम ये अपने जिसके लिए तुमने इतना प्रयास किया जिनको मारने के लिए भी उनके ही महल में तुम रह रहे हो और भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हो एक घर के कुत्ते की तरह, ऐसा स्ट्रांग एकदम कड़े शब्दों में बोलते हैं, अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपा, घर के कुत्ते की तरह जी रहे हो। तो इतना सब सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र को समझा कि नहीं नहीं लगता है कुछ तो करना चाहिए ना? तो अनेक अनेक प्रकार से प्रयास करने के पश्चात भाई कोई सोचने लगता है कि कुछ तो होना चाहिए इसके ऊपर, फिर वो कर्म कांड से कर्म योग के स्तर पे आता है, फिर वो भगवान को कुछ अर्पण करना शुरू करता है और फिर भी अभी आसक्ति तो है ही क्योंकि अभी भी वो सुख के लिए ही कार्य कर रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं लोग किसके लिए, सुख के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है और जैसा चाहिए वैसा मिल भी गया तो रहता नहीं है ना। तो जैसा यही चैतन्य चरण प्रभु ऐसा बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड इज अनअटेनेबल, इवन इफ यू गेट इट इट इज अनपैलेटेबल एंड इवन इफ इट इज पैलेटेबल इट इज अनरिटेनेबल। तो ये भौतिक संसार का सुख है और इस संसार में अलग अलग प्रकार से, मतलब भागवतम में कुत्ते का उदाहरण बहुत दिया जाता है, जीव जो है वो एक गली के कुत्ते की तरह ये योनि से यो योनि में जाता रहता है ना। शुत परीतो यथा दीनम सारमेयम गृहम गृहम चरण विंदन्ति यद दीनम दंडम ओदनम एव वा, कभी उसको दंड मिलता है कभी उसको अच्छा खाने के लिए मिल जाता है। उसी प्रकार यथा कामाशयो जीवा, इस प्रकार काम से मुक्त काम से भरा हुआ जीव कभी अच्छे योनि में जाता है कभी नीच योनि में जाता है, वो चलता रहता है उसका। तो इसीलिए भगवान ने जो संसार बनाया है एकदम परफेक्ट है, यू नो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम परफेक्ट, वॉट एवर कम्स फ्रॉम परफेक्ट इज ऑल्सो परफेक्ट कंप्लीट होल। तो क्या परफेक्ट है, क्या परफेक्टली बनाया, इतना तो दुख है, सो इट इज परफेक्टली मेड टू फ्रस्ट्रेट आवर डिजायर्स, यू नो हमारी इच्छाओं को अच्छे से फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये भौतिक जगत बनाया है भगवान ने, ताकि हम समझें कि ये संसार में रह के भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो स्वयं बोल रहे हैं अरे ऐसा शरीर बनाया है, बेचारे अंदर से परेशान बाहर से परेशान मन से परेशान, शुत्र त्रिधातु बिरमा मुहुर्द्यमान शीतोष्ण वात वर्षा इतरेतराच कामाग्निना सकल योनिषु दह्यमान संपश्यतो मनोरुक्रम सीदते मे। तो अंदर से भूख प्यास कफ वात पित्त हमेशा डिस्टर्ब है, बाहर से गर्मी सर्दी बारिश सब चल रहा है, उतना ही नहीं काम की अग्नि से जल रहे हैं सकल योनिषु। तो इस प्रकार प्रयास करते करते वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचता है, फिर वो पूछने लगता है, स्टेज ऑफ इंक्विजिटिवनेस आता है, अभी वो जिज्ञासु बन जाता है, इस संसार से निकल के भी कुछ है क्या, फिर वो प्रश्न करने लगता है के आमी के ने आमार जारे तापत्रय, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है उसको। तो फिर प्रयास कर रहा है पूछ रहा है क्या है, इस संसार से निकल के कुछ हो सकता है, कुछ सुख मिलने का कुछ चांस है जहाँ पे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके वो इस संसार से विरक्ति के स्तर पे आता है और विरक्त होने लगता है, और इस स्तर तक आने के लिए कभी कभी जन्मों लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के पश्चात कोई जीव है इस स्तर तक आता है। लेकिन भगवान इस श्लोक में पृथु महाराज को बताते हैं, यदि कोई भक्ति करता है तो ये स्तर है वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है, सरलता से प्राप्त कर लेता है। उसको ये स्तर पे आने के लिए करोड़ों जन्म नहीं लेने पड़ते हैं। भक्ति के मार्ग से वो बहुत सरलता से ये स्तर पे आ जाता है। तो इसलिए भक्ति जो है वो सरलता का मार्ग है, बहुत सरल है, तो उसके लिए बहुत जन्म नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी ही हम इस संसार से विरक्त होकर भगवान के चरणों में भक्ति करने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं इस भक्ति के द्वारा। तो ये है स्टेज ऑफ इंक्विजिटिवनेस, जब जीव को जिज्ञासा होती है, मैं क्यों इस संसार में दुख भोग रहा हूँ, क्यों इस संसार में इतना प्रॉब्लम है। तो ये स्तर आने के पश्चात फिर धीरे धीरे वो प्रश्न करने लगता है और भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ने लगता है। तो जब यदि एक योगा लैडर जो देखेंगे तो ज्ञान के पश्चात अष्टांग योग आता है। तो अष्टांग योग में अभी ये व्यक्ति जो है वो जो ज्ञानी बन गया है, ज्ञानी के पश्चात वो भगवान का दर्शन करने लगता है अपने हृदय में, तो वो है अष्टांग योग का मार्ग। लेकिन भागवत में कहा गया है और रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि यदि कोई ज्ञानी भी हो, अष्टांग योगी भी हो, कर्मी भी हो, यदि वो भक्ति उसमें ऐड नहीं करेगा, भक्ति जोड़ेगा नहीं, तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम सौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। तो वो एक जो धान है जिससे चावल निकाल लिया गया हो और वो उसके जो खाली धान का जो कवरिंग है उसको कूट रहे हैं तो अंदर से कुछ निकलेगा नहीं, उसी प्रकार से यदि ज्ञान का मार्ग कोई पालन कर रहा है, योग का मार्ग कोई पालन कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है उसमें, तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद और पारदर्शी हो जाता है। तो ये जो भक्ति के माध्यम से हृदय के जो भी कल्मश होते हैं वो निकल जाते हैं, पारदर्शी हो जाता है हृदय, और वही भक्ति का मार्ग है। जैसे भागवत में कहा गया है कि इस संसार में यदि कोई कितना भी पाप किया है लेकिन भक्ति के मार्ग में आता है, भगवान के नाम रूप गुण और लीला को सुनने लगता है, तो वो अपने पापों से बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाता है। यस्या खिलामीव हबी सुमंगलई वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी प्राणंति शुंभंति पुनंति वै जगत यास्ताद विरक्ता शवशोभ नामति। अखिल अमीव, जितने भी पाप किए हैं वो हबी, वो नष्ट हो जाते हैं, और सुमंगलई, मंगल आ जाता है, मंगलता का वातावरण आ जाता है। जब क्या होता है, वाचो विमिश्रा, जब भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, तो यही एक मार्ग है जिससे इस संसार में प्राण आता है, शुद्धिकरण होता है। प्राणंति शुंभंति पुनंति वही जगत, अन्यथा जितने भी संसार के जो भी मैगजीन पढ़ लीजिए और जो भी अपने लिटरेचर पढ़िए, वो क्या है, शव शोभनामति, वो जैसे शव को डेकोरेशन किया जाए वो है, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है किसी को। और इस स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साधु संघ का आश्रय। साधु संघ यदि करेंगे तो इस स्तर तक बहुत ही शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। जैसे कविराज गोस्वामी बताते हैं, एक जीव का क्या यात्रा है इस भौतिक जगत में, नित्य बद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। नित्य बद्ध है और इस संसार में कितने करोड़ों जन्म से नरक आदि दुख भोग रहा है। से ही दोषे माया पिशाची दंड को रे तारे आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे। वो दोष के कारण, क्या दोष है, मैं इस संसार में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता हूं, इंद्र तृप्ति करना चाहता हूं, वो दोष के कारण माया पिशाची दंड करे तारे, वो दंड करती है कैसे, अधि आत्मिक, अधि भौतिक और अधि दैविक तापों द्वारा। लेकिन काम क्रोध हर दास या तारला तीखाए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, बहुत उसको लात खा रहा है, पिटाई हो रहा है, लेकिन यदि किसी भाग्यवश साधु का संग मिल जाए, साधु को वैद्य कहा गया है, तो जैसे पुराने समय में लोगों को ऐसी विद्या थी कि यदि सांप काट ले किसी को तो उसको मंत्र उच्चारण से ही उसका विष निकाल देते थे, अभी भी है कहीं कहीं ऐसा ज्ञान। तो तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटे आए। तो जो डिवोटी है, साधु है, वो भी एक उपदेश देता है, वो भी एक मंत्र देता है, वो मंत्र है उपदेश का मंत्र, वो मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का सहारा यदि लेते हैं तो पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए, जो भुक्ति की आशा है और मुक्ति की आशा है वो है एक पिशाची। जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि मायावादी जो हैं वो ये समझते हैं कि यदि हम भगवान का नाम रूप और गुण लीला का वर्णन करेंगे तो हम भगवान के जैसे बन जाएंगे और भगवान हो जाएंगे, तो वो मायावाद है। वो भगवान का आश्रय लेते हैं किस लिए, ताकि वो भगवान बन पाए। एक बार श्लोक प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक जगह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो बीच में एक थोड़ा नाला था, तो एक उनके शिष्य थे उस दूसरी तरफ गए और प्रभुपाद जी को हाथ दिए, तो प्रभुपाद वो उनका हाथ पकड़ के नाले को क्रॉस किए और उनको धक्का दे दिए, वो जो उनका डिसाइपल था वो उसी में गिर गया। तो एकदम शॉक हो गया, बोले ये क्या, मैंने प्रभुपाद को हाथ पकड़ के इधर लेके यार मुझे धक्का दे रहे हैं। प्रभुपाद बोले यही मायावादियों का काम है, वो गुरु का सहारा लेते हैं भगवान बनने के लिए, बाद में गुरु को ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो मायावाद है वो भक्त के लिए क्या है, वो नरक के समान है, कैवल्यम नरकायते, वो नरक के समान है। तो इसलिए भगवान ये जो मुक्ति को, भक्त मुक्ति को कुछ भी उसके लिए महत्व नहीं है भक्त के लिए। तो रूप गोस्वामी पद्यावली में एक कन्वर्सेशन बता रहे हैं डिवोटी और मुक्ति देवी के बीच में, मुक्ति माता जी, यू नो। सो एक बार एक डिवोटी चैंटिंग कर रहे हैं आंख बंद करके, भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं, तो अचानक मुक्ति देवी आ जाती है, क्योंकि बिलमंगल ठाकुर भी बोलते हैं जब भगवान का भक्ति करते हैं तो मुक्ति देवी मुकुलितांजलि सेव्यते अस्मान, अरे मेरे सेवा के लिए सामने खड़ी है मुक्ति देवी। तो आंख बंद करके से भगवान का ध्यान में लगे हैं तो पता चल जाता है ना कोई आया है सामने, तो आंख खोलते हैं तो एक कोई तो देवी खड़ी है, बोलते कहाँ तुम, कौन है आप, बोलती है मुक्ति रूपागता अस्मि भवती, मैं मुक्ति हूँ, कस्माद अकस्माद यह, अरे अचानक यहाँ पे कैसे आ गया, मैंने तो बुलाया नहीं। तो मुक्ति बोलती है त्वाम कृष्ण देव स्मरणेन भवतो दासी पदम प्रापिता, अरे आप कृष्ण का स्मरण कर रही हैं मैं आपकी दासी हो गई हूँ। तो डिवोटी बोलते हैं दूरे तिष्ठ मनागनागसी, दूर रहो, यू नो। तो वो तो एकदम डर जाती है, बोले मैं सेवा के लिए आई हूँ और आप मेरे को गाली दे रहे हैं, कथम कुर्याद अनार्यमयि, मैंने ऐसे क्या गलत काम किया भाई। तो डिवोटी बोलते हैं त्वद गंधा निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत, अरे आपके गंध से मेरी भगवत भक्ति की जो भी इच्छा है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए भक्त के लिए जो कैवल्य है वो नरक के समान है, क्योंकि उसमें सेवा नहीं है, भक्त को केवल सेवा चाहिए, कहीं पे भी रहे कोई भी प्रकार की मुक्ति दो लेकिन सेवा दो, भगवान की सेवा है तो मैं स्वर्ग में भी रहूंगा वैकुंठ में भी रहूंगा, नहीं है तो मैं कहीं नहीं रह सकता, मुझे जहां पे सेवा है वहीं पे रहना है। सालोक्य सारिष्टि सामिप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृहणन्ति विनामत सेवनम जना, नहीं लेते हैं वो, दीयमानम न गृहणन्ति, नहीं लेंगे यदि सेवा नहीं है तो। तो ये भक्तों के संग में आके पता चलता है कि भक्ति का क्या महत्व है, और जो मुक्ति है उसके लिए हमारे लिए हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, इसलिए भक्तों का बहुत महत्व है। ज्ञानावलंब का केचित केचित् कर्मावलंबका, वयम तू हरिदासानां पादत्राणावलंबका। तो इसलिए एक भक्त बोलते हैं कि कुछ लोग ज्ञान का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग कर्म का आश्रय लेते हैं, मैं तो भगवान के भक्तों के चप्पल का आश्रय ले रहा हूँ। पादत्राण, पादत्राण है ना मराठी में, पादत्राण बोलते हैं, पादत्राण अवलंबका। तो इसलिए यदि भक्तों का संग और भक्तों का शरण मिले तो भगवान की भक्ति बहुत सरलता से प्राप्त होती है, और फिर ये मायावाद का जो भी सिद्धांत है उससे हम आकर्षित नहीं होते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अकलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का नित्य दास मानता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है, जो जीवात्मा की पूर्ण अवस्था का पद है। इस संसार में कोई दास नहीं बनना चाहता है, यू नो, कोई किसी को बोले तुम दास है, सर्वेंट है, सर्वेंट मतलब किसी को सुनना पसंद नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आते हैं, इस यू नो भक्ति में आते हैं, तो सबसे पहले यही सुनते हैं हम, तुम दास नहीं है, दास दासानुदास है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि भौतिक जगत में दास मतलब एक्सप्लॉयटेशन, दास मतलब उसके पास कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो पूरा उल्टा है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखः, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे जो सबसे निचला है वो सबसे ऊपर है आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में भगवान के भक्त इतने प्रसन्न रहते हैं कि भगवान भी सोच रहे हैं इनको इतना क्या प्रसन्नता हो रहा है मेरी भक्ति करके। तो वो प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। कृष्ण दास अभिमान आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। कृष्ण दास बनने का जो अभिमान है वो आनंद का सागर है, और इसके सामने ब्रह्म सुख को यदि करोड़ों गुना भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका एक बिंदु के समान भी नहीं होगा ये ब्रह्म सुख। तो इसलिए जो भक्ति का आनंद है, दास बनने का आनंद है, वो बहुत बढ़ के है। तो वो दास का आनंद का अनुभव करने के लिए ही भगवान भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ए गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, हे न धन बिलाइला संसारे, ऐछे दयालु अवतार, ऐछे दाता नाही आर गुण के हनारे वर्णी बारे। तो वही आस्वादन करने के लिए जो राधा रानी आस्वादन कर रही हैं, जो सब आध्यात्मिक जगत के जीव आस्वादन कर रहे हैं, वो आनंद को आस्वादन करने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये है भगवान के भक्त बनने का, दास बनने का आनंद। उसके आगे ब्रह्म सुख तो है वो एक, जैसे एक और जगह कहा गया है कि वो खातोदक सम है, जैसे भक्ति का आनंद है वो समुद्र के समान है, और जो ब्रह्मानंद है वो एक नाला है ना। तो ऐसा है ब्रह्मानंद और भक्ति का आनंद। तो इसलिए बार बार भागवत में और अनेक भक्त लोग यही मांगते हैं कि हमको भक्तों का संग दीजिए जिससे हम भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकें। जब गोपियाँ इतना मक्खन निकाल के, रोज मक्खन निकालती हैं, क्यों निकालती हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि भाई कृष्ण आए और मक्खन चुराएं हमारे घर से। लेकिन फिर भी वो चुराने के बाद खुश प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन फिर वो यशोदा माई के पास जाके कंप्लेन क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो सोच रही हैं कि अरे ये जो कृष्ण है अपने घर में तो कभी मक्खन चुराते नहीं हैं। तो यशोदा माई को ये लीला देखने के लिए मिलती नहीं है कभी। तो हम उनको थोड़ा प्रसन्नता देते हैं, उनको जाके बताते हैं। तो इसलिए जब परस्परानुकथनम होता है तब मिथरति मिथि तुष्टि और निवृत्ति हो जाती है, तब आनंद आता है। तो इसलिए साधु संग प्राप्त करने का जो इच्छा है वो हर एक भक्त का है। भगवान सामने खड़े हैं फिर भी डिवोटी क्या बोल रहे हैं? साधु संग चाहिए। भक्तिम मुहु प्रवहताम तोय में प्रसंगो, ध्रुव महाराज बोल रहे हैं आपके भक्तों का संग चाहिए, प्रहलाद महाराज भी वही बोल रहे हैं। तो जो भी भक्त भगवान का दर्शन करके भी वही बोल रहे हैं कि आपके भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि इस संसार से निकलना है और इस संसार से निकलने का मार्ग क्या है। तो इसलिए भगवान भी इस श्लोक में पृथु महाराज को बता रहे हैं कि जो भी भक्त मेरी भक्ति करता है जीवन की इस अवस्था में उसको शांति मिलती है, और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। भगवान यही चाहते हैं कि सब जो जीव हैं वो हमेशा शांति से रहें, सुख से रहें। लेकिन प्रॉब्लम है कि किसी को ये नहीं मालूम कि कैसे सुख और शांति मिले। सब लोग सुख और शांति चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि यदि सुख चाहिए और शांति चाहिए तो मेरे कथाओं में मन लगाना पड़ेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कभी नहीं हो सकता है। और शांति कब मिलेगी? जब भगवान से अपना संबंध स्थापित किया जाए। उसी संबंध को स्थापित करने के लिए भगवान इतने दयालु हैं कि वो बार बार आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, अपने भक्तों को भेज रहे हैं, शास्त्रों के रूप में आ रहे हैं। तो भगवान बहुत ओवर टाइम कर रहे हैं हमको वापस लेके जाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर का संवाद हो रहा है, तो उसमें सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, क्योंकि सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर पे पूरे फोड़े हो गए थे, पस निकल रहा था, तो बहुत ही दुखी थे। तो महाप्रभु आए, उनको आलिंगन किए और उनको एकदम ठीक कर दिए। महारौरवहिते करिले तोमार उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। तो बोलते हैं अरे आपको भगवान ने ऐसे महारौरव जैसे पीड़ित जीवन से मुक्त किया है। कृपार समुद्र, भगवान कृपा के समुद्र हैं, गंभीर, बहुत गंभीर हैं। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कृष्णा इज वर्किंग वेरी ग्रेवली टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। भगवान बहुत कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये डिवोटी, इसको डिवोटी कैसे बनाया जाए, कैसे इसको भक्ति में लाया जाए। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी किसके लिए अवतार लिए हैं? कि सब जीवों को डिवोटी बनाना है। और इसके लिए यही पंच तत्व मिली, पृथ्वी आसिया पूर्वे प्रेमा भंडारेर मुद्रा उगाड़िया, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, यत यत पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण। जो प्रेम उन्होंने सतयुग में नहीं दिया, द्वापर त्रेता में नहीं दिया, वो देने के लिए कलयुग में आए हैं। और वो जो प्रेम का जो भंडार था उस पर लॉक लगाया हुआ है, ताला था, तो उसको तोड़ दिया और बांट रहे हैं और सबको डुबाना चाहते हैं। ये प्रेम की नदी बह रही है, चैतन्य अवतारे वह प्रेमामृत वन्य। लेकिन कुछ लोग जो थे वो उसमें डूब नहीं रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे। कौन थे वो? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक, पाषंडीयत पड़ुया अधम। मायावादी, कर्मी लोग, निंदक, पाषंडी, ये सब लोग भाग रहे थे। सही सब महादक्ष धाइया पलाइया, ये बहुत बहुत महादक्ष एक्सपर्ट भाग रहे हो। तो महाप्रभु सोचे ठीक है, जगत डुबाइले आमी करिमु यतन। अरे मैं तो जगत को डुबाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, ये लोग भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक अभी ट्रिक, एक तो युक्ति निकालूंगा। क्या युक्ति निकाले? तो इसलिए वो संन्यास लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और वो पूछे, एम आई सिंपल और क्रुकेड, क्या मैं सरल हूँ या चालाक हूँ? तो डिवोटी क्या बोलेंगे? प्रभुपाद आप सरल हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं आया अमेरिका में और सबको चालाकी से मैंने डिवोटी बना दिया, किसी को पता भी नहीं चला, प्रसाद खिला खिला के सबको डिवोटी बना दिए प्रभुपाद। तो इसलिए भगवान बहुत ही चालाकी से कार्य करते हैं। भगवान के भक्त भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि कैसे डिवोटी बनाए, कैसे इस संसार के जीवों को जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं उसको डिवोटी बनाया जाए, बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे गजेंद्र के बारे में वर्णन आता है कि जब गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, ऐसा पुकार रहे हैं भगवान को, तो भगवान गरुड़ जी को बोले चलो हमको बचाना है अपने डिवोटी को। तो गरुड़ जी तो बहुत तेज उड़ते हैं, तो उड़ रहे हैं पूरे स्पीड से, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? और तेज उड़ो, और तेज उड़ो। गरुड़ो अपि मंद गति इति मत्वा सहसा अवतीर्य। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि गरुड़ का गति भी उनको मंद लग रहा था, इतना तेज उड़ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो गरुड़ जी भी, उनको भी मूर्छा आ गई कि इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कुछ कार्य कर लेते हैं तो आदमी चक्कर आके गिर जाता है। तो भगवान उनको अपने कंधे पे उठा के भाग रहे हैं ना? तो इसके लिए भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्तों की रक्षा करनी है। तो ये भगवान की महानता है, वो चाहते हैं कि भाई ये न केन प्रकारेण ये जीव को डिवोटी बनाना है, मेरे निकट लाना है। और एक बार जो भक्ति में आया फिर भगवान छोड़ते नहीं है। सेई भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभुर चरण, सेई प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन। वो प्रभु धन्य है, वो भक्त धन्य है जो प्रभु को नहीं छोड़ता है, और वो भक्त भी और प्रभु भी धन्य है जो भी अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, सेई प्रभु धन्य तारे चूले धरियाने। लेकिन यदि दुर्दैव दुर्भाग्य से कोई दूर चला गया, डिवोटी डिवोटी के साथ में आया, संग में रहा, लेकिन किसी कारणवश पुराने काम वासनाओं के कारण, अर्थों के कारण वो दूर जा रहा है, तो भगवान क्या करेंगे? उसको शिखा पकड़ के उसको खींच के वापस लेके आते हैं। सही प्रभु धन्य तारे चूले धरियाने। तो ये भगवान की महानता है। तो और इन सब में भगवान कैसे पकड़ के लाते हैं? किसी भक्त को भेजते हैं। कोई भक्त आता है, बोलता है, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? जो भरत महाराज थे वो भाव के स्तर पे थे, फिर भी वो एक हिरण के से आसक्त हो गए, क्योंकि कोई उनके संग नहीं था उस समय, कोई उनको बोला नहीं भरत प्रभु क्या कर रहे हैं आप, यू नो। तो भाव के स्तर पर भी भक्त का संग बहुत आवश्यक है, और भक्तों का संग मिलता है तो कितना भी दुर्भाग्यवान जीव हो वो सौभाग्यवान हो जाता है। तो ये भक्तों की महानता है और ये भक्ति की महानता है। तो इसीलिए भगवान बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस जीव को संसार से निकालें। तो फिर भक्ति में और भक्तों के संग में आने के पश्चात वो सच में आनंद का अनुभव करने लगता है। तो ये आनंद का अनुभव हम सब ने थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी तो किया है। कभी कोई कीर्तन में अनुभव कर लिया, कभी कोई लेक्चर में, कभी यात्रा में, कभी कोई फेस्टिवल में। तो ये जो अनुभव हैं यही हमको भक्ति में बनाए रखते हैं, क्योंकि जब जीवन में प्रॉब्लम आता है तो वही अनुभव याद आते हैं, नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं है, रुक जाता हूँ थोड़ा। न वै जनो जातु कथंचन ब्रजेन, मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्मृतिम, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनम पुनः, विहातुम इच्छे नरसग्रहो जना। तो जो भगवान के चरण कमलों का जो रस है, भक्ति का रस है, उसका एक बार आस्वादन कर लिया वो छोड़ नहीं पाता है। जैसे कोई ग्रह से ग्रस्त हो जाता है जो व्यक्ति, तो उसके जीवन में बहुत कुछ होता रहता है उसकी इच्छाओं के बिना, वैसे ही कृष्ण के ग्रह से जो ग्रस्त हो जाता है वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकता। वो चाहेगा भी कि मैं भक्ति नहीं करूं, अभी दूर जाता हूं थोड़ा, भगवान उसको खींच के वापस लेके आएंगे, क्योंकि वो रस के ग्रह से ग्रस्त है। प्रहलाद महाराज के बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, वो कृष्ण के ग्रह से ग्रस्त हो गए। जैसे कोई शनि के ग्रह से ग्रस्त होता है, राहु के ग्रह से होता है, ये कृष्ण के ग्रह से ग्रस्त हो गए हैं। तो इसलिए उनको इस संसार के किसी भी दुख से, कितना भी हिरण्यकश्यप मारने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कृष्ण ग्रह से ग्रस्त हैं। तो ये अपने भक्ति में वो आनंद का अनुभव होता है, और फिर वो एक्सटेसी, स्टेज ऑफ एक्सटेसी पे आता है, जब इस संसार के किसी भी वस्तु से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके सब अनर्थ चले गए हैं, और भगवान की भक्ति में आनंद का अनुभव कर रहा है। श्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद वैवर्ण्य, ये सब अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। तो ये है एक जीव की इस संसार में यात्रा। इस संसार में गिरने से लेके भक्ति में आनंद प्राप्त करने तक एक जीव के साथ क्या क्या होता है वो अभी आज थोड़ा हम कुछ चर्चा किए हैं। और ये सब तब होगा जब हम भक्ति में सिंसियर गंभीर रूप से जप करेंगे और गंभीर रूप से भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण और स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होता रहेगा। तो यही इस श्लोक में भगवान पृथु महाराज को बता रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि जो मायावादी हैं वो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भगवान की सेवा करने का जो आनंद है उसको छोड़ नहीं पाता है। और 11वें श्लोक में भी तात्पर्य है, तो इसका श्लोक का अर्थ हम पढ़ लेंगे। जो कोई भी यह जानता है कि पांच स्थूल तत्वों कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह भौतिक शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वो भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। तो जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, भक्ति का ज्ञान अर्जित करते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम, जो भक्ति के मार्ग में ज्ञान और वैराग्य आ ही जाता है, तो इस श्लोक में वही भगवान बता रहे हैं कि उसको समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के स्तर पर कार्य करने लगता है। आत्मा के स्तर पर कार्य करना अर्थात क्या है? भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना, भगवान की सेवा करना, वही है मुक्ति हितवान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वो है भगवान की सेवा। तो यही इस श्लोक में, और श्लोक प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा स्थिर रहती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव इस संसार से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, मैं ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये परिवार है, पत्नी बच्चे पति, तो वो इस संसार से बंध जाता है और इसी कारण सुख और दुखों को भोगने लगता है। लेकिन यदि हम भक्ति करें तो धीरे धीरे इस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम में आगे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। किसी को कुछ प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर द क्लास। ये सेवा की परिभाषा कैसे समझेंगे?
एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, सेवा और पूजा में क्या अंतर है? प्रभुपाद बोले, पूजा मतलब मैं आपका कुछ, आपको कुछ मदद कर रहा हूँ और बदले में मैं कुछ चाह रहा हूँ। तो देवता की पूजा होती है, कृष्ण की सेवा होती है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब देवताओं के पास कोई व्यक्ति जाता है तो उनको कोई अर्पित करते हैं, कुछ सामग्री, कुछ धन संपत्ति, लेकिन वो बदले में कुछ चाह रहे हैं, सुख संपत्ति घरे आवे, यू नो, तो वो सब चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पूजा, मैं पूजा कर रहा हूँ। लेकिन सेवा अर्थात मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल आपको प्रसन्न करना है, वो है सेवा। जिसमें अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ इच्छा नहीं हो, उसको बोलते हैं सेवा। सेवा अर्थात हम भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम का संबंध का अर्थ क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेम। और प्रेम में कभी कभी बहुत दुख भी होता है, सेवा करना इतना आसान नहीं है। जिसको आप प्रेम कर रहे हैं उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन तोमार सेवाए दुख होए सेओ तो परम सुख। तो भक्तिनो ठाकुर बोल रहे हैं, आपकी सेवा में जो दुख है वो मेरा परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। क्यों वो सुख है मेरा? क्योंकि मेरी अविद्या का नाश हो रहा है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो अविद्या का नाश हो जाता है, क्योंकि मैं अपने लिए, हम अपने लिए नहीं चाह रहे हैं कुछ, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते हैं, जिस रूप में जिस भाव में हम भगवान के पास जाएंगे उसी भाव से भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो ये है सेवा, जिसमें स्वयं के लिए कुछ इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं सेवा। ओके, हरे कृष्ण। यस माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आज के श्लोक में आपने बताया कि हम जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाते हैं, आसक्तियों में फंस जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति, फिर जब हम भक्तों की संगति में आते हैं तो हमारी अवेयरनेस होती है। तो कुछ मेरा भी लाइफ जर्नी अभी तक का ऐसा ही रहा। तो फिर जब मुझे अवेयरनेस हुई तो धीरे धीरे करके मेरे जो फिजिकल और इंद्रियों पे मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन कभी कभी जो पास्ट है वो विचारों में कभी कभी परेशान करते हैं, जो वो आसक्तियाँ हैं, तो उससे कैसे मतलब ओवरकम किया जा सकता है?
एक भक्त जो है चार स्तरों से गुजरता है।
हाँ प्रभु, जैसे कि मतलब फिजिकल और जो इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करना बहुत इजी हो रहा है, बट विचारों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
इसलिए भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, सबसे पहले इंद्रियों को संयम करना शुरू करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदव, नियम्य भरदर्शवम्। इंद्रियों को संयम में करना आसान है, मन को संयम में करना मुश्किल है। तो जब भक्त हैं, भक्ति जो जीव है जो भक्ति करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, मन में यदि सामने को इंद्र तृप्ति की वस्तु आई तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं, उसको बोलते हैं एफर्टलेस डिफीट, प्रयास ही नहीं किया, कुछ हुआ इंद्र तृप्ति का वस्तु आ गया, सरेंडर। उसके पश्चात थोड़ा इंद्र भक्ति करने से शुद्धिकरण होता है तो दूसरा स्तर आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रगल एंड डिफीट। फिर हम संघर्ष करते हैं, इंद्र तृप्ति का कुछ साधन आ रहा है तो मन में इच्छा आ रही है लेकिन हम लोग संघर्ष करके ना, संघर्ष कर रहे हैं फिर भी अंत में वो हम बोलते हैं नहीं, हम इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। फिर वो थोड़े भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो तीसरे स्तर पर पहुँचते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रगल एंड सक्सेस। अभी वो संघर्ष करके वो विजय प्राप्त कर लेता है इंद्रियों पर, इंद्रियां बोल रही हैं कि इंद्र तृप्ति कर लो लेकिन वो नहीं करता है। और फिर अंतिम जो स्तर है वो है एफर्टलेस सक्सेस। तो ये स्तर पे जीव को सोचना नहीं है, भक्त को सोचना नहीं पड़ता है कि इंद्र तृप्ति करूं कि नहीं करूं। जैसे यमुनाचार्य बोलते हैं जब इंद्र तृप्ति का विचार आता है तो मैं उसको थूक देता हूं। तो जो जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लोग अभी इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू किए हैं और वो थोड़ा आसान है, लेकिन जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी तो धीरे धीरे मन पे भी नियंत्रण हो जाएगा। वो स्वाभाविक है, वो एक भक्ति का जो प्रोसेस है, जितना भक्ति के स्तर प्रोसेस को पालन करेंगे, जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा वैसे मन भी शांत हो जाएगा और भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक हमको क्या करना है, धैर्य, उत्साह, निश्चय और धैर्य, तो उसको सहन करना है। जैसे ही भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही सबसे पहला उपदेश देते हैं, ताम स्थितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन सहन करना सीखो, शीत उष्ण सुख दुख मन के वेगों को सहन करना सीखो। तो ये सब जब तक पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये सब विचार आएंगे, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है और भक्ति करते रहना है, तो धीरे धीरे वो मन के वेग भी कम होते रहेंगे और हमारा मन भगवान के नाम रूप गुण लीला में ज्यादा लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।